दोस्तों, अर्थशास्त्र विषय कठिन नहीं है अगर उसे सही मार्गदर्शन में पढ़ा और समझा जाए। मोबाइल वाणी आपके लिए करियर की बात कार्यक्रम के एपिसोड 6 में आज अर्थशास्त्र का नया अध्याय लेकर हाजिर हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
आज हम लोग बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके इम्पोर्टेंट बातों को कवर करेंगे। भारत की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं दो आधार पे चलती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के जो भाग हैं वो दो आधार पे हैं, एक भारतीय मुद्रा बाजार और एक भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार के आधार पर दो भाग हैं, एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित के अंतर्गत वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक आते हैं, और असंगठित जिसे हम देसी बैंकर कहते हैं उसमें साहूकार, महाजन, सेठ, रिश्तेदार आदि आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार जो है उसके अंतर्गत तीन भाग आते हैं, एक प्रतिभूति बाजार, दूसरा औद्योगिक बाजार, तीसरा विकास वित्त संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं जो है इनके भी दो भाग हैं, एक गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। गैर संस्थागत के अंदर महाजन, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार आदि आते हैं, और संस्थागत के अंतर्गत सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वित्तीय संस्था तो वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूंजी से है। उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए एवं कच्चा माल खरीदने के लिए होती है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। यह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। यह जो है देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यवसाय को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ईस्वी में देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसका अर्थ यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में काम करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। निजी क्षेत्र के बैंक कुछ ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व लिमिटेड जुड़ा होता है वे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा सरकार रखती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 27 बैंक हैं, इसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इससे संबंध प्राप्त बैंक, 2 बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI एवं भारतीय महिला बैंक आदि आते हैं। कृषि शाख के अंतर्गत इनमें से सबसे प्रमुख बैंक हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सबसे प्रमुख। उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माने जाते हैं। वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है और वह सूती नगरी भी है। अब हम लोग भूमि विकास बैंक के बारे में जानते हैं। इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में की गई। यह बैंक किसान को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करता है। किसान की भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए ऋण देता है। ऋण उचित ब्याज दर पर 15-20 वर्षों में के लिए दिया जाता है। इनमें दो स्तर के बैंक होते हैं, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास।
तो दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र की तरह और भी कई विषयों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो सुनते रहे हमारा खास कार्यक्रम करियर की बात। अगर आपके मन में भी है करियर से जुड़ा कोई भी सवाल तो फोन में अभी दबाएं नंबर 3 का बटन और रिकॉर्ड करें अपनी बात।